हाँ बताओ, और क्या खबर है? प्लीज़ बुरी खबर मत सुनाना, मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ। अब कोई ऐसी खबर नहीं सुनने की हिम्मत नहीं है जिससे परेशानियाँ बढ़ जाएं। जहाँ एक परेशानी खत्म होती नहीं, दूसरी शुरू हो जाती है, आदित्य बोला। मैं कल उस मॉडल प्रिया मल्होत्रा से मिलने गया था। बहुत हमदर्दी दिखाई मैंने उसके पास जाकर। जिस आदित्य ने मेरी बहन की ज़िंदगी बर्बाद कर दी, मुझे उसको बर्बाद करने के लिए उसकी हेल्प चाहिए। अब वो मुझ पर विश्वास रखने लगी है, मेहर आदित्य को बताने लगा। मेहर, बात तो ठीक है कि तुम मनाल को वहां से निकाल दोगे, मगर निकालोगे कैसे? दुश्मनों की नज़र तुम्हारी और माना के ऊपर है। वे तुम्हारी हर एक्टिविटी को नोट कर रहे होंगे। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम जो बात कह रहे हो वो पूरी कैसे करोगे। ये बात आप मुझ पर छोड़ दो। वैसे मैं आपको एक राज की बात बताऊं, जिस वकील के पास हम जा रहे हैं वो यूनिवर्सिटी में मेरा सीनियर था, हमारी अच्छी दोस्ती थी। वो मेरी बहुत हेल्प कर रहा है इस केस में, इसलिए आप इस बात की टेंशन मत लो। मैं उसके साथ हर बात शेयर कर सकता हूँ, और वो एक वकील के साथ साथ मेरे दोस्त की तरह भी मेरी हेल्प कर रहा है। उसने मुझसे कहा है माना दी को कैसे निकालना है, वो उसकी जिम्मेदारी है। मुझे तुमसे एक बात और भी पूछनी थी। तुमने मुझसे कहा था मेरे परिवार में कोई है जो मेरे ही खिलाफ है। तुमने मुझसे ये बात किस आधार पर कही थी? आखिर जो तुम्हें पता है तो मुझे आराम से बता सकते हो मेहर, कोई बात मत छुपाना मुझसे। जीजू, ये बात सच है ना? अगर आप दोनों का तलाक होता है, नानी की जो प्रॉपर्टी है वो किसी आश्रम में चली जाएगी? हाँ, नानी की वसीयत के मुताबिक अगर मेरा मेरी वाइफ के साथ तलाक होता है तो सारी प्रॉपर्टी किसी बनारस के आश्रम को चली जाएगी। इसका मेरे ऊपर रेप के इल्ज़ाम से क्या मतलब? मुझे तुम्हारी बात समझ नहीं आई मेहर, आदित्य ने पूछा। मुझे नहीं पता, मगर उस आश्रम का संबंध आपके ही परिवार से है। अगर उस आश्रम को प्रॉपर्टी जाती है तो सोचकर बताइए इसका फ़ायदा किसे होता है। मुझे इस बात के बारे में इतना ही पता चला है। फिर आप फिक्र मत कीजिए, जल्दी ही मैं सारी बात पता लगा लूँगा। चलो दी, आज वकील के पास जाकर तुम्हारे लिए तलाक की बात करते हैं। तुम आदित्य से तलाक ले ही लो। सही बात है मेहर, मैं उस इंसान के साथ अब नहीं रहना चाहती, इसलिए तलाक की बात करने हम वकील के पास जा रहे हैं। दोनों गाड़ी में बैठते हुए बात कर रहे थे। वे जानबूझकर बातें कर रहे थे ताकि जो लोग उन पर नज़र रखे हुए हैं वे यही समझें कि वे दोनों वकील के पास आदित्य के साथ तलाक की बात करने जा रहे थे। असल में वकील मोहन मित्तल ने अपने ऑफिस से ही माना को निकालने का प्रोग्राम बनाया हुआ था। प्रोग्राम इस तरह का बनाया था कि माना पर नज़र रखने वालों को पता भी नहीं चलना था कि माना वहां से निकल चुकी है। उन पर नज़र रखने वालों की आंखों में धूल कैसे झोंकनी थी? आखिर मोहन मित्तल जैसे चालाक वकील थे, उसे पता था कि ऐसे मामले कैसे निपटाए जाते हैं। जब मेहर और मनाल वकील के ऑफिस जाते हैं, वहां से मेहर और उसका दोस्त मोहन मित्तल बड़ी चालाकी से मनाल को निकाल देते हैं। मनाल वकील मोहन मित्तल की पीए के साथ अपने कपड़े बदल लेती है और वहां से मोहन मित्तल के साथ ही निकल जाती है। मेहर वकील के ऑफिस में ही रह जाता है और मोहन मित्तल की पीए माना के कपड़े पहनकर वहीं रुक जाती है। मोहन मित्तल उसे रेलवे स्टेशन तक ले जाता है। साथ में वे ये भी ध्यान रखते हैं कि कहीं कोई उसका पीछा तो नहीं कर रहा। आगे उसका कोई और आदमी खड़ा होता है जो मनाल को करनाल जाने वाली ट्रेन पर चढ़ा देता है। इस तरह से माना गाड़ी में चढ़ जाती है। आगे मनाल जाकर अपने कंपार्टमेंट में बैठ जाती है। गाड़ी चल पड़ती है। उसे बताया गया था कि रास्ते में आदित्य उसे मिल जाएगा। उसे आदित्य का इंतजार होने लगता है। जहां पर भी गाड़ी रुकती है उसे लगता है कि आदित्य आ जाएगा, मगर आदित्य नहीं आया। उसे सिर्फ आदित्य का इंतजार रहता था। कितने दिन हो गए उससे मिले, वो सही सलामत गाड़ी में आ जाए, वो यही सोच रही थी। उसे बहुत घबराहट हो रही थी। एक छोटे से स्टेशन पर एक दाढ़ी और लंबे बालों वाला आदमी ट्रेन में चढ़ता है। वो आकर मनाल के पास बैठ जाता है। मनाल उस पर ध्यान नहीं देती। वो धीरे धीरे बिल्कुल मनाल के साथ लग जाता है। मनाल को परेशानी तो हो रही थी, मगर वो उस पर ध्यान नहीं देना चाहती। असल में मेहर ने मोहन मित्तल से वो पूरा कंपार्टमेंट मनाल और आदित्य के लिए ही बुक कराया था। अब वहां पर वो आदमी आ गया था जो मनाल को परेशान कर रहा था। मनाल अपने बैग से किताब निकाल लेती है। मनाल चुपचाप बैठकर अपनी किताब पढ़ने लगती है। फिर बैठे बैठे मनाल को ख्याल आया कि लंबे बाल, बढ़ी हुई दाढ़ी, आंखों पर काला चश्मा कहीं आदित्य तो नहीं है, इसने भेस बदला हो। वो समझ गई थी कि आदित्य ही है जो उसके साथ टाइम पास कर रहा है। आदित्य उसे छेड़ता तो रहा मगर बोला नहीं। उसे पता था कि जब वो बोलेगा तो पकड़ा जाएगा, मगर फिर भी मनाल ने उसे पहचान लिया था। मनाल खड़ी हो गई। खड़े होकर उसने उसके बाल खींच लिए। आदित्य की बिगड़ उतर गई। वो हंसने लगा। अच्छा, तो तुमने मुझे पहचान लिया? वो उसके गले लगकर रोने लगी। कितनी देर तक वो उसके गले लगी हुई सिसकती रही। अब क्यों रो रही हो? चुप कर जाओ, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, मेरी तरफ देखो तुम। पहले क्यों नहीं बताया मुझे? परेशान करने लगे, अब मैं चुप नहीं करूंगी। चुप कर जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें अपने तरीके से चुप करा दूंगा। सोच लो, आदित्य उसे छेड़ने लगा। क्या?